विश्व हास्य दिवस आज आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। आज हमारे साथ मोबाइल वाणी के मंच पर विविध मंचों से सम्मानित गली से दिल्ली तक बेबागी से ज्वलन समस्याओं पर हास्य व्यंग के माध्यम से कटाक्ष कर अपनी विशेष पहचान स्थापित करने वाले मां नर्मदा की कोख में पले बढ़े हास्य व्यंग कवि प्रकाश गुप्ता जी से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। नमस्कार सर जी।
नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। विश्व हास्य दिवस की आप सभी को और आप सभी की जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सभी को ठहाकेदार हंसी से भरपूर शुभकामनाएं।
सर जी, आज हम आपसे सर्वप्रथम यह जानना चाहते कि आपने अपने जन्मभूमि माँ नर्मदा की कोख से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक
जी,
यानी कि आपकी कर्मभूमि तक
जी,
आपकी पूरी हम पूरा परिचय जानना चाहते कि आपने गली से दिल्ली तक कैसे पहुंचे और किस तरह गए।
मामला कुछ यूं है। सबसे पहले तो बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में जन्मा, यहीं पला बढ़ा। हरिशंकर परसाई की ये माटी है और उनको सभी जानते हैं, और कुछ है तो एक यहाँ की माटी का असर है, पानी का असर है, कुछ मेरे अंदर एक ह्यूमर होता है ना, जो हास्य का पट है। तो बस शुरुआत में यूं ही मैं टिप्पणियां किया करता था, हास्य की छोटी छोटी रचनाएं, जैसे दो पंक्तियों में भी बात कही जा सकती है, उसके लिए कई बार बड़ी कविता की जरूरत नहीं होती। यूं ही मैंने लिखा कि चुनाव के पहले नेताजी की फोटो के नीचे लिखा था आपके अपने क्षेत्रीय उम्मीदवार, और चुनाव के बाद लिखा पाया ढूंढ के लाने वाले के नाम 50,000। तो इस तरीके की कविताएं लिखी और वहां से वो लिखने का जो सिलसिला था वो लगातार चलता रहा। फिर ऑल इंडिया रेडियो में गया और वहां अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी तो जो सुन रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने कहा आप तो बहुत बढ़िया लिखते हैं। और उस समय जब मैंने कविताएं सुनाई आकाशवाणी के मंच के माध्यम से, तो वो हास्य की नहीं थी, वो कविताएं दूसरी विधाओं से जुड़ी हुई थी, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात रही होगी कि सुनने वालों को बहुत अच्छी लगी। तो वो जो छोटी छोटी कविताएं लिखी हास्य व्यंग्य की समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, वहां से ये मामला आगे बढ़ा, लोगों को बहुत पसंद आई, और पता नहीं फिर तो वो तो एक यात्रा चल पड़ी और आगे बस आप लोगों के सामने पूरी जो है दुनिया और देश को हंसा रहा हूँ।
सर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अपने किस उम्र से कविताएं लिखना प्रारंभ किया और हास्य विधा में ही क्यों लिखते रहे।
अच्छा, एक बड़ी बात है, देखिए मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि मुझे खुद याद नहीं है मैंने कब लिखा, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि लगभग 10-12 साल की उम्र से एक तो पता नहीं क्यों घर में कविताओं की किताबें बहुत थी, तो उन किताबों को पढ़ते पढ़ते और फिर अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ते समय मेरे अंदर ना हिंदी साहित्य के प्रति बड़ी गहन रुचि जागी, और दूसरे जो छात्र थे वो तो उसको, चाहे वो महादेवी वर्मा, निराला प्रसाद पंत, किसी को भी वो पढ़ रहे थे, उनकी कहानियां, लेख कुछ भी पढ़ रहे थे, तो वो उनके लिए सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए था। मैं पढ़ता था तो मैं यूं सोचता था कि मैं भी ऐसा ही लिखूं, और मैंने लिखने की कोशिश की और उसमें सफल भी रहा। पहले बड़ा ही कठिन लिखता था तो बस ऐसे लिखना शुरू किया, लेकिन हास्य में नहीं लिखा बहुत ज्यादा शुरुआत में, हास्य की छोटी छोटी रचनाएं टिप्पणियां ही रही, दो पंक्तियां रही और वो पत्रों में प्रकाशित थी। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने लगभग गीत, गजल, गंभीर रचनाएं, जीवन की समस्याओं से जुड़ी हुई, जीवन दर्शन से जुड़ी सभी तरह की रचनाएं लिखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि हास्य की प्रस्तुति मेरी शायद निखरती गई या जो भी है, लोगों को पसंद आ रही थी, और हास्य मैं ये देख रहा था कि लोगों के बीच में हास्य के कवि बड़ी अच्छी पहचान बना रहे हैं और वो बना उनको नाम सम्मान सब कुछ मिल रहा है, और वो तो खैर दूसरी बात थी, मेरे अंदर जो है सहज हास्य प्रस्तुत करने का एक जो हुनर है वो शुरुआत से था, और उसका कारण भी शायद कुछ यूं है कि मैं अभिनय में मुझे बड़ी 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 रुचि थी और आज भी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप तक मैंने अटेंड की, तो ये जब सब मेरा काम, मेरा अभिनय मेरी कविताओं के माध्यम से, मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचा, तो उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में मुझे तालियां मिली, लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, बड़े कवियों ने भी उसको पहचाना और मंचों के माध्यम से कहीं ना कहीं वो फिर हास्य की जो है रेलगाड़ी चल पड़ी, ऐसा है।
सर जी, जैसा कि कहते हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आपने विविध मंचों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों का दिल जीता, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कवि सम्मेलनों के मंच पर आपका कैसे आना हुआ?
अच्छा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है। मैं आई वांट टू टेल यू एक्चुअली वन थिंग कि जब मैंने एक बार कुछ यूं हुआ कि मेरे ही शहर में एक जैन मंदिर का कवि सम्मेलन का मंच था। अब उसमें बहुत सारे कवियों को बुलाया गया और मैं मुझे भी किसी ने कह दिया, मेरे परिचित थे, कि ये काफी साल पुरानी बात है, मुझे याद नहीं है, ये लगभग होगी मेरे ख्याल से 1997-95 ऐसे कुछ की बात होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत छोटा था, बोले आप एक काम कीजिए, आप भी आइए कविता सुनाइए। तो बड़े बड़े कवि आए थे और मेरे ही शहर के थे, जबलपुर के थे, और मैंने उस मंच पर मैं पहुंचा और मैंने कविता सुनाई और वो हास्य की बड़ी लंबी कविता थी। और उस कविता को सुनने के बाद मुझे एक वरिष्ठ कवि हैं शहर के, पूरे देश में उनका नाम है, उन्होंने मुझे माला पहनाई, खूब आशीर्वाद दिया और उनको बहुत अच्छा लगा। बात कुछ यूं हुई कि मुझे एक लिफाफा मिला उसमें। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि लिफाफा में क्या है। मैंने घर आके खोला तो उसमें 21 रुपए रखे थे सर, 21 रुपीज। अच्छा, अब आप समझ सकते हैं कि मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि कविताओं को सुनाने पर पैसे मिलते हैं। 21 रुपया मिले, मुझे बड़ा उत्साह। रात के करीब 1 बजे मैं घर पहुंचा, 1 या 2 बजे मुझे याद नहीं, और मैंने कहा ये तो बहुत मजा आ गया यार, 21 रुपया भी मिले, कविता भी सुनाई। फिर मैं कुछ कवियों से जुड़ा और फिर वो मंचों पर जहां जैसा मौका मिला, कई बार कवियों ने, हमारे ही शहर के कुछ कवियों ने, मैं साफ कहूं कि कोशिश भी की कि ये आगे आए ही ना, ये मंचों पर दिखे ना, इसको इसका तमाम तरह के संघर्षों के बीच में वो मैं लगा रहा, काम करता रहा मंच पर। इस तरीके से मेरा आना जाना, बीच में गायब हो जाना, फिर अपने काम में लग जाना, पढ़ाई में लग जाना, ये सब चलता रहा और इस तरीके से मंच पर। लेकिन माँ सरस्वती को यही मंजूर था, उनका आशीर्वाद था कि मंचों के माध्यम से मैं लोगों को हंसाऊं, कविताएं सुनाऊं, तो आज आप लोगों के सामने हूं।
भाई साहब, जैसा कि आपने अभी अपने उद्बोधन में कहा कि आपको काफी संघर्ष करना पड़ा, तो इस जब से आपने कविता की शुरुआत की तब से लेकर आज तक आपको किन किन संघर्षों से गुजरना पड़ा?
मैं यूं कहूंगा सर कि संघर्ष तो आज भी जारी है ना, दिल पे बोझ ना कोई भारी रखिए, ये जिंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रखिए, तो संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा और ये चलता रहेगा। संघर्षों की यदि मैं बात करूं तो कविताओं का जो जुनून है वो मुझे आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 2005-06 में दिल्ली गया, अब दिल्ली में कई कवियों के घर तक चला गया, जो देश के बड़े कवि हैं उनसे मिला, मुलाकात की, फिर कई बार लोग कोशिश की मैं मंचों पर आऊं, कवियों से बहुत सोचा कि ये शायद उत्साह बढ़ाएंगे। जरूरी नहीं है कि यदि एक पेड़ रास्ते पर लगा हुआ है तो हर निकलने वाला राहगीर ये सोचे कि इस पेड़ की जड़ों में मैं पानी डाल दूं तो कम से कम आने वाली पीढ़ियों को ये फल देगा, और फल दे ना दे कम से कम लहलाता रहेगा। तो बहुत सारे लोग यूं भी मिलते हैं जो नहीं चाहते कि आप दिखें या आप लिखें, और इसी के बीच में आपका दिखना और लिखना यदि जारी है तो यकीन मानना यही एक संघर्ष है। ये संघर्ष लगातार आज भी जारी है और मुझे पहले भी करना पड़ा, मैंने तो कवि सम्मेलन भी कराए, आज भी करा रहा हूँ, कई कवियों को बुलाया, आज भी बुला रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि जो 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 जिन हालातों से मुझे गुजरना पड़ा, लोगों ने कोशिश की कि हाँ शायद ये 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 एक नाम उभर रहा है और शायद इसके उभरने से कहीं ना कहीं हमें तकलीफ है। तो मैं नहीं चाहता कि ये संघर्ष बाकी जो हमारे दूसरे कवि भाई आ रहे हैं उनको झेलना पड़े। ये संघर्ष तो लगातार चलता रहेगा सर।
सर जी, जैसा कि आपने प्रिंट मीडिया से लेकर टेलीविजन रेडियो के माध्यम से कई शो किए और आज आपका विश्व हास्य दिवस के अवसर पर मोबाइल वाणी पर भी साक्षात्कार हो रहा है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं इस अवसर पर कि टीवी शो जो आपने किए उसमें सबसे अच्छा आपका प्रोग्राम कौन सा रहा और उसके लिए आपको कैसा महसूस हुआ।
मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि लगभग मेरे, मुझे याद नहीं है, आई हैव डन मोर देन 50 टीवी शोज ऑन स्क्रीन एक्चुअली। 50 से ज्यादा टीवी शो मेरे हो चुके हैं। न्यूज 24 पर हास्य सम्मेलन में आया हूँ, कवि युद्ध जी न्यूज पर आया, देश का बड़ा ही चर्चित कार्यक्रम था, मैं हास्य का कवि हूँ। दो दिन पहले मुझे पता चला कि मुझे राष्ट्रवादी विषय मिला हुआ है, धारा 370 समान नागरिक संहिता और राम मंदिर पर मुझे कविता लिखने का सौभाग्य मिला और बड़ा ही चुनौतीपूर्ण ये काम था। तो मैंने वो कविताएं भी लिखी, वीर सावरकर पर लिखी, यूट्यूब पर उपलब्ध है, हास्य कवि प्रकाश गुप्ता ये मेरा चैनल है उसके माध्यम से। तो जब मैं जी न्यूज में पर आया तो मैंने कवि युद्ध में बिल्कुल ओज से परिपूर्ण कविताएं सुनाई जो मेरी छवि के विपरीत थी। फिर उसके बाद यदि बात करूं तो ये जो जी न्यूज पर आया वो भी मेरा बड़ा ही प्रिय कार्यक्रम रहा है। वाह वाह क्या बात है, सब टीवी पर उसमें कई बार आ चुका हूँ। ठीक, अभी डीडी उर्दू पर था एक कार्यक्रम में, कभी हाजिर है। और इस तरीके से दूरदर्शन न जाने कितने चैनल हो चुके हैं, मुझे तो याद भी नहीं है। और ये कहना कि ये मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था या इस कार्यक्रम में आया तो बहुत मजा। हाँ, अभी पिछले दिनों में न्यूज 24 पर आया हूँ, होली पर एक कार्यक्रम था और सौरभ जैन सुमन जी उसका संचालन कर रहे, साथ में उनके जी न्यूज 24 के एक एंकर थे। तो ये जो कार्यक्रम था ये भी बड़ा मजेदार हुआ। और इस तरीके से लगातार ये यात्रा जारी, ये कहना बहुत मुश्किल कि ये वाला टीवी का कार्यक्रम बहुत मजेदार था। मेरी कोशिश ये रहती कि जिस भी मंच पर रहूं, जिस भी कार्यक्रम में रहूं, अपना बेस्ट दूं और लोगों को मजा आए।
सर जी, हम आपसे आज इस अवसर पर यह भी जानना चाहेंगे
जी
कि कविता सुनाकर जो लोग ठहाके लगाते और जब आप मंच पर होते हो तो आपको किस में सबसे ज्यादा आनंद आता है, इसके पीछे क्या कारण है?
मुझे किस में आनंद आता है जब मैं मंच पर होता, एक्चुअली देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मंच पर कविताएं सुनाना ही एक आनंद की यात्रा है। कविताएं सुनाना, आप जब अकेले मंच पर खड़े होते हो और हजारों लोग सामने बैठे होते हैं, उन चेहरों पर जो कहीं ना कहीं तनाव है, जिंदगी की बेचैनियां हैं और उदासियां हैं, और जब वो रेखाएं उदासियों की हटती हैं और उन पर कहीं ना कहीं 2 इंच की मुस्कान दिखती है, तो सबसे बड़ा अच्छा तो यही लगता है कि भैया हमने जो सुनाया उनको बड़ा मजा आया, वो ठहाके लगा रहे हैं, फिर भले घर जाके जो जैसा जीवन जीना है जिए, कम से कम कुछ समय के लिए तो हमारे साथ जिंदगी का आनंद का उत्सव और महोत्सव मना रहे हैं। एक बात, मुझे किसमें आनंद आता है, देखिए मंच पर तो आनंद आता ही है, कई बार मैं बहुत ज्यादा लाइव होता हूँ एक्चुअली, जैसे जब मैं मंच पर होता हूँ तो पब्लिक से बात कर रहा होता हूँ या उन कोई उठ के भी जा रहा होता तो छोटी छोटी टिप्पणियां निकल कर आती हैं, और कहीं कोई कुछ बीच में कमेंट कर रहा होता है या कोई अभी बहुत सारे कार्यक्रम थे, जैसे आपके रामाकोना में ही थे, बहुत ही नौजवान पीढ़ी के लोग सामने बैठे थे, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातें कही और उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आया तो उसमें बड़ा मजा आता है। जब हम जो हमारे कई बार ये सोच के हम नहीं जाते कि मैं ये नहीं जाता कि आज मंच पर मैं जब ऐसा कुछ होगा तो ये सुनाऊंगा, वो तुरंत तत्काल जो अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉन्टेनियस निकल कर आता है, उसमें बड़ा मजा आता है। सर
सर आज इस अवसर पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपका जन्म माँ नर्मदा की कोख में हुआ है, नर्मदा किनारे जबलपुर शहर में, और जब आप रामाकोना में संतों की नगरी रामाकोना में जब पहुंचे कन्हान नदी के तट पर जहां संतों ने रेत की शक्कर और पानी का घी बनाया था, ऐसे ग्राम में आप आदरणीय खेमराज जी श्रीबंधु, आदर्श के सहयोग से हमको आपके काव्य पाठ सुनने को मिला, तो आपको रामाकोना में कैसा महसूस हुआ?
बहुत अच्छा लगता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि साहित्य, हास्य और कविताओं के बीच जब गांवों या छोटे शहरों की जमीन पर पढ़ते हैं और जब वहां पर हमारी प्रस्तुतियों की फसल लहलाती है, लोगों को बड़ा मजा आता है और जो प्यार स्नेह मिलता है, क्योंकि कई बार बड़ी ऐसी जगहों पर थोड़ा सा ये तनाव होता, टेंशन होता है कि पता नहीं लोग क्या सुनेंगे, किस तरह का रिएक्शन देंगे, लेकिन रामाकोना ही नहीं, इस तरह के बहुत सारे स्थानों पर जाकर बड़ा मजा आया। रामाकोना की यदि मैं बात करूं, बड़ा प्यार मिला, स्नेह मिला। खेमराज जी की आपने बात की, बड़े ही पारिवारिक माहौल में उनके परिवार में जाना, भोजन करना, इतना स्नेह मिलना, मंच तक उनका साथ, और फिर साथ में आपकी रामाकोना की जो भी जनता है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने जितनी मोहब्बत से, जितने स्नेह से, जितने सम्मान से न सिर्फ मेरी कविताएं सुनी, तालियां बजाई, ठहाके लगाए, और जब मंच करते हैं और जब लोग व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, सर आपकी कविताएं सुन के बड़ा मजा आया, अरे सर क्या बात है, अरे सर वो बहुत बड़े, सर एक सेल्फी हो जाए, सर आपका नंबर मिलेगा, जब ये तमाम चीजें होती हैं तो लगता है कि यार मैं तो इस योग्य हूँ ही नहीं, ये तो लोग हैं जो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम अगली यात्रा की तरफ आगे बढ़ जाते हैं।
सर जी, जैसा कि आज हम विश्व हास्य दिवस पर बात कर रहे हैं, तो हम आपसे आपकी सर्वाधिक प्रिय कविता है आज के इस अवसर पर सुनना चाहेंगे।
बहुत मुश्किल है ये कहना कि सर्वाधिक प्रिय कविता है। मेरी बहुत कई कुछ कविताएं तो मेरी हास्य की है ही नहीं, जबकि हास्य कवि के रूप में पूरे देश और दुनिया में जाना जा रहा हूँ। हास्य की कविताएं है ही नहीं, लेकिन मेरी बहुत ज्यादा प्रिय हैं। लेकिन आप लोग चूंकि हास्य कवि के रूप में मुझे जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, तो हास्य के एक दो टुकड़े जरूर सुना देता हूँ। विषय मेरे पास बहुत सारे हैं, महंगाई है, चूंकि रोटी से लेकर लंगोटी तक हर मुद्दे पर मैं लिखता हूँ। डिजिटल कविताएं भी मेरी होती हैं, है ना, कि तब मैं बात करता हूँ, एक पत्नी पति पत्नियों पर कविताएं सुनाता हूँ, तो तब मैं आप तक कुछ पंक्तियां पहुंचा रहा हूँ। कि एक तो मुझे एक पत्नी पर कविता याद आ रही कि एक पति ने अपने पति एक एक पति ने अपनी पति से पत्नी से कहा, यदि मैं कहीं खो जाऊं, इस दुनिया की भीड़ में गुम हो जाऊं, तो बताओ तुम क्या करोगी, क्या मुझे ढूंढने के लिए मेरे नाम और फोटो वाला अच्छा बड़ा विज्ञापन अखबार में नहीं दोगी। पत्नी पहले मुस्कुराई, फिर उसने 7 o'clock बुलेट के जैसी अपनी तेज पैनी जवान चलाई, बोली, मेरे प्राणनाथ, मैं आपके नाम और फोटो वाला अच्छा बड़ा विज्ञापन बनवाऊंगी, उसे हर बड़े समाचार पत्र में छपवाऊंगी, जिसमें लिखा होगा, मेरे प्रिय पति, तुम जहां हो वहीं रहना, दुनिया के सब कष्ट सहना, तुम्हारे जाने का हमें कोई गम है, ये तुम्हारी भ्रांति है, और जब से तुम गए हो घर में बहुत शांति है, जब से तुम गए हो घर में बहुत शांति है, जो तुम्हें ढूंढ कर लाएगा पुरस्कार नहीं दंड पाएगा, जो तुम्हें ढूंढ कर लाएगा पुरस्कार नहीं दंड पाएगा। पति बोला, एक मेरा ही कलेजा है जो तुम्हें इतने सालों से झेल रहा हूँ, अरे जीते जी मौत से खेल रहा हूँ, अरे मैंने पिछले सालों में तुम्हारे हाथों से जो बेलन, बातों, गाली और थाली की भयंकर मार सही है, यह भयानक प्रताड़ना मेरे लिए किसी दंड से कम नहीं है, अरे तुमसे छुटकारा का एक मौका तो मिले, देख लेना इस मौके का लाभ, लाइफ डिस्काउंट फेस्टिवल ऑफर की तरह उठाऊंगा, और अब जो गया तो कसम खाता हूँ सारी दुनिया के पीड़ित पतियों की, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। तो एक तो ये कविता हो गई, फिर जैसे कि मैंने कहा, मैं हर एक मुद्दे पर लिखता हूँ, चार पंक्तियां सुनाता हूँ, कि लव का मामला ऑलवेज धुआंधार नहीं होता। लव का मामला, प्यार मोहब्बत जब नई पीढ़ी को होता है, फास्ट फूड टाइप का लव होता है, तब मैं कहता हूँ कि लव का मामला ऑलवेज धुआंधार नहीं होता, कभी छोरी तो कभी छोरा मैरिज के लिए तैयार नहीं होता, और जब तक ना बनवा ले हीरो हीरोइन के नाम का टैटू, जब तक ना बनवा ले हीरो हीरोइन का हीरोइन के नाम का टैटू, अरे तब तक हीरोइन को भी हीरो से प्यार नहीं होता, तब तक हीरोइन को भी हीरो से प्यार नहीं होता। तो इस तरह की तमाम रचनाएं हैं, और ये रचनाएं मंचों के माध्यम से आप लोग कवि सम्मेलनों में बुलाएं, कवि सम्मेलन कराएं, तो प्रकाश गुप्ता को याद रखें, तो मैं आऊंगा, हंसाऊंगा और बहुत सी कविताएं सुनाऊंगा।
सर जी, हम आपसे अंत में चाहेंगे कि आप अपने चाहने वाले को क्या संदेश देना चाहेंगे आज की इस विश्व हास्य दिवस पर।
मैं यही कहूंगा साहब, मेरे जितनी ना सर मेरे चाहने वाले, बल्कि मेरे वो तमाम चाहने वाले जिनको कोई और चाहता है, और मेरे वो सब लोग जो मुझे नहीं किसी और को चाहते हैं, और ऐसे लोग जो मुझे नहीं चाहते हैं बल्कि मैं उनको भी चाहता हूँ, है ना, उन सब से मैं यही कहूंगा कि आपको रोने के लिए और रुलाने के लिए तो दुनिया तैयार है, वो तो मौका ही ढूंढ रही है कि आपको कब रोना आ जाए, आपकी आंख में आंसू आ जाए। तनाव बांटने के लिए हर कोई बाजार में खड़ा है। अब आपको ये निर्णय लेना है कि हंसना है, मुस्कुराना है या रोना है। तो मैं यही कहूंगा कि हंसिए, मुस्कुराइए, ठहाके लगाइए, जिंदगी का उत्सव मनाइए, और हंसने का कोई बहाना मत छोड़िए। और हंसने के लिए यदि कुछ करना है तो एक काम और कीजिएगा, आप हास्य कवि प्रकाश गुप्ता, मेरा यूट्यूब पर चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके वीडियो देखिएगा, आप हंसिएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर
जी,
हालांकि ये पापी पेट की मजबूरी हंसाने वाले को डराना पड़ रहा है, Amazon.com पर मेरी खौफनाक कहानियां आई हुई हैं, और ये डर की कहानियां हैं, इसमें डर बांट रहा हूँ। विश्व हास्य दिवस पर आप कहेंगे ये कौन सा सब्जेक्ट है, 13 खौफनाक कहानियां, डर का एक नया सफर। तो ये कहानियां भी आई हैं, एक सब्जेक्ट में ये जरूर कहूंगा कि मैं लगभग सभी विधाओं में लिखता हूँ और वॉइस ओवर वगैरह ये तमाम चीजें करता हूँ, तो ये कहानियां भी बड़ी मजेदार रही हैं, लोगों ने पसंद की हैं, तो ये भी आप लोग Amazon.com से आप ले सकते हैं। लेकिन आज हंसने हंसाने की बात है, तो मैं यही कहूंगा कि हंसिए, मुस्कुराइए, ठहाके लगाइए, है ना, और जिंदगी में मुस्कुराहटें बांटिए। बस यही प्रकाश गुप्ता, हास्य कवि की आप सभी को शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मोबाइल वाणी कम्युनिटी मीडिया चैनल के माध्यम से आज विश्व हास्य दिवस पर अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी, और गागर में सागर भरने जैसा आपने आज इस अवसर पर किया, क्योंकि समय बहुत कम था लेकिन बहुत कम शब्दों में आपने बहुत अधिक बातें रखी, इसके लिए मोबाइल वाणी पुनः आपको धन्यवाद देता है, तथा आज विश्व हास्य दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हास्य दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। यूं ही हंसिए, हंसाइए, ठहाके लगाइए, कवि सम्मेलन कीजिए, कवि सम्मेलन कराइए और हमें बुलाइए, और अपनी यादों में, अपने दिल के कोने में हमेशा मुझे याद रखिएगा, जगह दीजिएगा। धन्यवाद
जी सर।